एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जीतेंगे।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं पिता। हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे, हमें तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर पिता। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें तेरा समझ शक्ति दे ताकि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके पिता। हम सबों को तेरे राज के लिए तैयार कर, मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई से और तेरे बुद्धि से तेरे वचनों को तेरे लोगों को बतलाने सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सृष्टि की कहानी पर एक नज़दीकी दृष्टि। आज हम इसी पर विचार चर्चा करेंगे। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2:1-3 पद में ऐसा लिखा है, इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का निर्माण पूरा हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया। तब परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम किया। कहता है उत्पत्ति 2:1-3। प्यारो, उत्पत्ति 1-3 का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से हमें मानव उत्पत्ति, पतन और पुनर्स्थापना की आशा का विश्वसनीय विवरण प्रदान किया है। सृष्टि के वृतांत को समझने की चुनौतियां हैं। सृष्टि से जुड़े कुछ सबसे बड़े मुद्दे इस प्रकार हैं। क्या उत्पत्ति 1 की पहली 2 आयतों के बीच कहीं समय का अंतराल था? क्या परमेश्वर द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रारंभिक रचना और इस ग्रह पर जीवन की रचना के बीच कोई अंतराल था? या क्या संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना केवल कुछ हजार साल पहले हुई थी? बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा स्पष्ट रूप से बताती है कि इस ग्रह पर जीवन की रचना कुछ हजार साल पहले हुई थी। एक और मुद्दा यह चुनौती है कि उत्पत्ति 2 और उत्पत्ति 1 से सृष्टि का विरोधाभासी विवरण प्रस्तुत करता है और यह भी मानता है कि दोनों अध्याय 2 अलग अलग लोगों द्वारा लिखे गए थे जिनमें से कोई भी मूसा नहीं था। यह चुनौती बाइबल और स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी में मूसा द्वारा इस पुस्तक के ईश्वरीय प्रेरणा से रचित लेखक होने के बारे में दिए गए प्रमुख कथनों पर सीधा खंडन करती है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:1-2 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 2 पद कहता है, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:2 के बीच आपको क्या संबंध लगता है? क्या आपको लगता है कि वहाँ समय का कोई अंतराल था? आप इन दोनों आयतों को अपने शब्दों में कैसे कह सकते हैं? उत्पत्ति 1:1 और 2 का सही अनुवाद कैसे किया जाए और इन आयतों का क्या अर्थ है, इस पर विद्वानों के बीच काफ़ी बहस रही है। किंग जेम्स संस्करण इन पहली 2 आयतों का अनुवाद 2 स्वतंत्र वाक्यों के रूप में करता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधकार था। हमारे ग्रह पर जीवन की सृष्टि से पहले ब्रह्मांड में परमेश्वर की रचनात्मक गतिविधि के बारे में हमें संकेत इन आयतों में मिलती है। नीतिवचन 8:22-26, 30 पद, मीका 5:2, अय्यूब 38:5-10 तथा यशायाह 14:12-21, एजेकियेल 28:12-17 और पहला यूहन्ना 3:8। कोई भी सोच सकता है कि उत्पत्ति 1:2-3 में वर्णित आकाश और पृथ्वी की पूर्ण शुरुआत कब हुई, हमारे गृह के निर्माण से पहले और क्या क्या बनाया गया था। कई कारक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की रचना से पहले तारों, ग्रहों और अन्य प्राणियों का अस्तित्व था। आइए बाइबल में वर्णित कुछ कारकों पर गौर करें। पहला, नीति वचन 8:22-26 पद तथा उत्पत्ति 1:1 के आदि में से पहले की शुरुआत की बात करता प्रतीत होता है। प्रभु ने मुझे बुद्धि कहता है अपनी गति के आरंभ में और अपने प्राचीन कार्यों से भी पहले दी थी। दूसरा, मीका 5:2 एक शासक मसीह का वर्णन करता है जिसका प्रस्थान पुराने समय से वरन अनादि काल से है। इसे हम इब्रानी 1:8 पद पढ़ करके देख सकते हैं और मिला सकते हैं। तीसरा है अय्यूब 38:4-11 संकेत करता है कि परमेश्वर के पुत्र पृथ्वी की रचना से पहले से ही अस्तित्व में थे, क्योंकि वे सृष्टि के समय आनंद से गाने और जय जयकार करने के लिए वहां थे। यहाँ परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूतों को इस संकेत कर रहा है, उनको बोध कर रहा है जो आदम और हवा का जब सृष्टि हुई वे लोग परमेश्वर की सृष्टि, परमेश्वर के द्वारा सृष्टि किया गया इन जीवों के लिए गीत गाए, परमेश्वर की स्तुति किए, क्योंकि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। चौथा, हम पाते हैं उत्पत्ति 1:16 में का इब्रानी संकेत देता है कि सूर्य और चंद्रमा को तारों के साथ या उनके अतिरिक्त समय और ऋतुओं को नियंत्रित करने के लिए नियुक्तियां प्राप्त हुई। निहार्थ यह है कि तारे सृष्टि के सप्ताह से पहले ही वहां मौजूद थे तथा अपने नियुक्त कार्यों को पूरा कर रहे थे। पांचवा, परमेश्वर का सिंहासन जो स्वर्ग में है अनादि काल से अस्तित्व में है। भजन संहिता 45:6-93:2 कहता है, स्वर्ग स्वर्गदूतों का भी घर है जो पृथ्वी से पहले बनाए गए प्रतीत होते हैं। छठा, हम पाते हैं पहला यूहन्ना 3:8 के अनुसार शैतान ने शुरू से ही पाप किया। लूसिफर के अधम की यह शुरुआत 6 दिवसीय सृष्टि से पहले हुई थी। यशायाह 14:28 में हम इस बात को पाते हैं, शैतान ने पाप किया। वह एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने उसे शुद्ध बनाया था, लेकिन वह गलती किया, वह पाप किया, वह गलत चीज को चुन करके पाप किया। अनुमानत है स्वर्गदूतों की सृष्टि इस पृथ्वी पर जीवन की सृष्टि से पहले हुई थी। ये आयतें अन्य आयतों के साथ हमें बताती हैं कि परमेश्वर पिता, मसीह पुत्र और पवित्र आत्मा अनंतकाल से अस्तित्व में हैं। स्वर्ग, तारे, लूसिफर, देवदूत और शायद अन्य बुद्धिमान प्राणी हमारे ग्रह के निर्माण से पहले से ही अस्तित्व में थे। प्रभु ने मुझे अन्य लोगों का दृश्य दिखाया है, बहन एलन जी वाइट कहती है। उस स्थान के निवासी सभी आकार के थे, वे कुलीन, राजसी और सुंदर थे, उनमें यीशु की स्पष्ट छवि थी। बहन एलन जी वाइट लिखती है, प्रारंभिक लेखन में पृष्ठ प्रारंभिक लेखन का पृष्ठ 39-40 में यह बात हम पाते हैं। अनंत परमेश्वर और विशाल ब्राह्मण के रचयिता ने हमारे ग्रह पृथ्वी को निराकार और शून्य चुना ताकि उस पर जीवन का सृजन हो। उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान देकर हमारे संसार के प्रति अपने प्रेम, अपने परम प्रेम को भी प्रकट किया। जब परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि पूरी कर ली थी तब वे कुछ 4 चीजें थी जो उसने अभी तक नहीं बनाई थी। क्या आप जानते हैं, क्या आपको कुछ अलग लगता है, कुछ अजीब लगता है? आइए हम इसे आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2:4-5 कुछ लोग इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि उत्पत्ति 1 क्यों दर्शाता है कि पौधे और मनुष्य की रचना सृष्टि के पहले सप्ताह में हुई थी। उत्पत्ति 1:11-12, उत्पत्ति 1:26-27। जबकि अध्याय 2 यह सुझाव देता है और प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने इन्हें बाद में बनाया, उत्पत्ति 2:4-6। उत्पत्ति 2:4-6 के अनुसार परमेश्वर ने अभी तक चार चीजें नहीं बनाई थी। वे थे पहला खेत की झाड़ी, दूसरा खेत के पौधे और मिट्टी जोतने के लिए मनुष्य, और चौथी और धरती को सींचने के लिए वर्षा। उत्पत्ति 2:5 और उत्पत्ति 3:18 किस प्रकार की झाड़ियों और पौधों की ओर इशारा करते हैं? क्या वे पतन से पहले या बाद में बनाए गए थे? आइए हम आगे के पदस्थलों को देखें और इन्हें समझने की प्रयास करें। अंग्रेजी में पाठ पढ़ने पर कोई सोच सकता है कि अध्याय 2 का लेखक इस तथ्य की अनदेखी करता है कि ये चार चीजें सृष्टि के पहले सप्ताह के दौरान ही बनाई गई थी। हालांकि हिब्रू पाठ में यह स्पष्ट है कि अध्याय 2 में उल्लेखित चार चीजें जिन्हें अभी तक नहीं बनाया गया है का सृष्टि के पहले 6 दिनों के दौरान बनाई गई चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पहले 2 वस्तुओं के लिए हिब्रू शब्द खेत का झाड़ी और खेत का पौधा सृष्टि के 3रे दिन बनाए गए पौधों के लिए समान नाम नहीं है। वनस्पति, बीज देने वाले पौधे और बीज देने वाले फल देने वाले पेड़, ये 3रे दिन बनाए गए थे प्यारो, जिसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय की 11वां और 12वां पद में। आप वहां देख सकते हैं वास्तव में उत्पत्ति 2:5 सिया में झाड़ी के रूप में अनुवादित हिब्रू शब्द बाइबल में काफी दुर्लभ है, केवल 2 अन्य ग्रंथों में आता है, उत्पत्ति 21:15 में और अय्यूब 30:4-7 पद में, अर्थात एक कांटेदार या कांटेदार पौधा। पूर्ण अभिव्यक्ति सियाय हसादे खेत की झाड़ी या बेहतर खेत की थिस्ल, इंग्लिश में इसे थिसल कहते हैं, केवल उत्पत्ति 2:5 में आती है। गौरतलब है कि बाइबल में पहली बार कांटों और कटारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख अगले अध्याय उत्पत्ति 3:18 में किया गया है, जहां उन्हें पतन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पेश किया गया है। उत्पत्ति 2 का लेखक वास्तव में यह प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कांटेदार पौधे कहां से आए? वे उस बहुत अच्छी सृष्टि का हिस्सा नहीं थे जो सृष्टि के 6 दिनों के बाद पूरी हुई थी, बल्कि वे पतन के परिणाम स्वरूप आए थे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे। प्यारो, आपके चरित्र में और आपके आसपास के लोगों में कौन से आध्यात्मिक कांटे और उटकटारे हैं जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालते हैं? आप उसे कैसे निकाल सकते हैं? आप उनसे कैसे निपटेंगे? आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:5-7-25 में हम पाते हैं एक मनुष्य जो भूमि जोतता है। भूमि जोतने के लिए एक मनुष्य का वाक्यांश किसका संकेत करता है? भूमि की जुताई कब हुई? उत्पत्ति 2:5 में जैसा लिखा है, इब्रानी भाषा में किसी शब्द को रूपांतरित करने वाले विशेषण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्पत्ति 2:5 में भूमि जोतने वाला मनुष्य वह मनुष्य नहीं है जिसका रचना 6ठे दिन हुई थी, उत्पत्ति 1:26-27 में हम पाते हैं, बल्कि यह मनुष्य का एक ऐसा वर्णन है जो पतन के बाद ही लागू होता है, जब आदम को अपने भोजन के लिए भूमि से जोत और सिंचाई करके संघर्ष करना पड़ा। हम देख सकते हैं उत्पत्ति 3:17 में यह नया मनुष्य खेत की झाड़ी और खेत के पौधे के अनुरूप है जो भी पतन के बाद ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार फिर से भूमि जोतने वाला मनुष्य अध्याय 2 में अभी तक अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि वह पतन के बाद अध्याय 3 तक ऐसा मनुष्य नहीं बना। भूमि जोतने के लिए एक मनुष्य का वाक्यांश संकेत करता है कि मनुष्य पाप के बाद उसे यह काम करना पड़ा। पाप से पहले यह उसके लिए श्राप नहीं था। परमेश्वर उसे बारी को देखने के लिए दिया था और वह काम खुशी से करता था। लेकिन पाप के बाद खेत को कोड़ना या जोतना दर्दनाक दुखदायी अनुभव था। इब्रानी भाषा में किसी शब्द को उत्पत्ति एक का एक में वर्णित आकाश और पृथ्वी की पूर्ण शुरुआत कब हुई, इससे हमारा तात्पर्य केवल इस पृथ्वी पर जीवन से नहीं है, जिसका स्पष्ट रूप से उत्पत्ति एक का 3-2-4 में उल्लेख है, बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण से है। सृष्टिवादियों के इस विषय पर सामान्यतः दो मत रहे हैं। पहला, कोई अंतराल नहीं का विचार, यह संभावना कि पूरे ब्राह्मण की सभी चीजें जिनमें तारे और उत्पत्ति 1:1-2 में वर्णित कच्चा माल भी शामिल है, जिनसे इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, 7 दिवसीय सृष्टि सप्ताह के पहले दिन में शामिल हैं। दूसरा, निष्क्रिय अंतराल का विचार, यह संभावना कि तारे और शायद आकाश और पृथ्वी के कच्चे माल भी अपनी अनसंरचित अपूर्ण अवस्था में सृष्टि सप्ताह के 7 दिनों से पहले बहुत पहले ईश्वर द्वारा बनाए गए थे। प्यारो, क्या आप कभी कोई पुस्तक पढ़े हैं जिसमें किसी कहानी की एक व्यापक रूपरेखा बताई गई हो और फिर उसे और विस्तार से दोहराया गया हो? इसी तरह हम उत्पत्ति की कहानी में पाते हैं, सृष्टि के बारे में पाते हैं, उत्पत्ति 1 में ऐसा लिखा गया है, फिर उत्पत्ति 2 में उसे फिर से बताया गया है कुछ और बातों को जोड़ करके। इससे हम मानते हैं कि उत्पत्ति का लेखक और उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 का लेखक दोनों का मूसा ही लेखक है, जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा पाकर वह यह सृष्टि का कहानी हम मनुष्य जाति के लिए लिखा है। आगे हम पाते हैं परमेश्वर द्वारा अपने हाथों से मिट्टी से आदम को रचने और उसमें जीवन का श्वास फूकने का वर्णन उत्पत्ति 2:7 में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के बारे में हम देख सकते हैं कि वह हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वह मिट्टी से हमें बनाया। वह सामर्थ्य परमेश्वर है। वह अपने वचन से सारे पृथ्वी की सृष्टि की। 6 दिन में वह मनुष्य को बनाया, अपने आकार में बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर ही सारे पृथ्वी का सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर ही स्वर्गदूतों का भी सृष्टि करने वाला है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए यीशु मसीह को दिया जब हम पाप में गिरे थे। मनुष्य जो शुरू में बनाया गया था वह पापी नहीं था, लेकिन जब पाप किया उसे खेत जोतना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन उसे भी बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह धरती में आए, हमारे समान मनुष्य बनकर जीवन यापन किए, ताकि मनुष्य होकर के हमें जीवन दे सकते हैं, हमारा उद्धार कर सकते हैं। प्यारों, हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने ब्राह्मण की रचना कब शुरू की, फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है कि वह आरंभ से ही मौजूद था। उत्पत्ति 1 और 2 हमें परमेश्वर की सृष्टि गतिविधि का एक एकीकृत और पूरक विवरण प्रदान करते हैं, जो विशेष रूप से मानव जाति के लिए उसके द्वारा प्रदान किए गए प्रेम को दर्शाता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम सबों को तेरा वचन सुनाने के लिए। पिता परमेश्वर, आदि में तूने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और तूने मनुष्य जाति को भी बनाया। तेरा प्रेम के द्वारा, प्रेम के कारण हमें बनाया। तू चाहता है कि हम तेरे संगति में रहें। हालांकि पाप हमें तुझसे दूर करता है, तू हमें फिर से अपने पास लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया। हम तुझ में विश्वास करते हैं, तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है। हम तेरे महान शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास करें और तेरे पीछे तेरे रास्ता में चले। हम सबों को तैयार कर तेरे राज के लिए और तेरे राज में बचाने उनकी विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण करें।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।